सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबसे नागरिकता संशोधन कानून पर बात करने जा रहा हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसे अब लागू कर दिया गया है। अब जबकि मैं आप सबसे इस विषय पर बात कर रहा हूं, मेरे दिमाग में दो तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला कि आप इसके बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, आपने अखबार जरूर पढ़े होंगे, कुछ चैनल्स जो इसको लेकर के आपके लिए प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं वे भी आप लोगों ने सुन लिए होंगे, ये मेरे दिमाग में पहले से है। तो फिर मेरे बताने का अर्थ क्या है? मेरे बताने का जो अर्थ है, ये इसका दूसरा पॉइंट है, वो ये है कि मैं आपसे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको क्या क्या जानना चाहिए और इस पूरे सिटीजनशिप एक्ट की जो आत्मा है वो क्या है। यानी कि मेरी कोशिश होगी कि मैं उन पक्षों पर रोशनी डाल सकूं जो आपके अंदर एक अलग तरह की समझ पैदा करेंगे इस टॉपिक के बारे में। और ये जो अलग तरह की समझ होगी, इससे दो फायदे आपको होंगे। पहला तो यह है कि इस टॉपिक पर आपकी पकड़ बन जाएगी, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप उसका जवाब देने की स्थिति में होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर सामान्य तरीके से भी कोई प्रश्न पूछा गया तो दूसरे भी लिखेंगे और आप भी लिखेंगे। लेकिन मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको कुछ इस रूप में अधिक सक्षम बना सकूं कि आप दूसरों से थोड़ा सा बेहतर लिख सके। बस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है ना, ये पास और फेल का मामला नहीं है, ये मामला सेलेक्ट होने का है। तो इस लिहाज से आप मेरे इस वीडियो को देखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट, आइए शुरुआत करते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये अमेंडमेंट एक्ट है, याद रखिए। इसका मतलब यह हुआ कि पहले कोई सिटीजनशिप का एक्ट रहा होगा, उसी को तो आप अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, डेफिनेटली हमारे पास एक भारतीय नागरिकता कानून है 1955 का। अब सवाल ये उठता है कि ये जो एक्ट बना था, याद रखिए, ये 2019 का है, वो है 1955। और जब ये एक्ट पारित हुआ था उसके बाद इसका पूरे देश के कई राज्यों में जबरदस्त रूप से विरोध हुआ। कुछ राज्यों ने इसके खिलाफ अपने विधानसभाओं से बिल्कुल प्रस्ताव भी पारित कर दिया, हिंसक घटनाएं भी हुई, धरना दिया गया, काफी विरोध हुआ। तो यहां पर दिमाग में एक बात आपके आ सकती है कि क्या पहली बार वो जो हमारा 1955 का एक्ट था उसे संशोधित किया गया है? नहीं, इससे पहले भी इस कानून को कई बार संशोधित किया जा चुका है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है डेफिनेटली उसमें संशोधन किए जाते हैं, तो ये कोई पहला संशोधन नहीं है। इससे पहले पहले मुझे लगता है कि कम से कम 5-1 बार तो संशोधन हो चुके हैं, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रहा हूं। इसके लिए मैं इतना जरूर अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, हमने अपने ऑनलाइन लेक्चर्स के तहत इसे बहुत ही डिटेल में प्रोवाइड किया है, जिसमें ये जो CAA है अभी 2019 का, इसे भी शामिल कर लिया गया है। राइट, अब सवाल दूसरा उठता है कि 2019 का ये कानून है और ये अभी 2024 में जाकर के क्यों लागू हो रहा है? दिसंबर 2019 में इसे संसद ने पारित कर दिया था, इतना तो आप जानते ही हैं। आइए थोड़े से इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर बात करते हैं। जब संसद में पेश किया जाता है तो विधेयक कहलाता है, जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है तब भी वह विधेयक ही कहलाता है, जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह फिर कानून बन जाता है। लेकिन कानून बन जाने का मतलब यह नहीं कि वह लागू हो गया, वह तब तक लागू नहीं होता है जब तक सरकार उसे अधिसूचित नहीं करती है, नोटिफाइड नहीं करती है। राइट, तो इसमें इतना वक्त क्यों लगा? देखिए, नोटिफाइड करने से पहले, जैसे कि कोई भी कानून बन गया तो कानून में डिटेल्स नहीं होती हैं, कानून बना है, नियम नहीं बने हैं। प्लीज नोट इट डाउन कि कानून बने हैं, नियम नहीं बने हैं। ठीक है, आप कानून के लिए पहले से नियम नहीं बना करके रखते हैं, क्योंकि संसद में उस पर बहस होगी और पता नहीं कौन सा प्रोविजन बदल दिया जाए, कौन सा नया डाला जाए, लेकिन काफी कुछ दिमाग में रूपरेखा उसकी रहती है। तो पहली बात तो यह है कि इसके नियम नहीं बने थे। दूसरी परेशानी यह थी कि इसके पारित होते ही पूरे देश में विरोध होना शुरू हो गया था, सुप्रीम कोर्ट में ढेर सारी इसके खिलाफ याचिकाएं दायर हो गई थी। और आपको मालूम है दिसंबर 2019 में ये पारित हुआ, कोरोना कब आ गया था? आपको मालूम है मार्च 2020 में कोरोना आ गया था। ठीक है, और सरकार को भी ये लग रहा था कि नहीं, इसको लेकर के लोगों के दिमाग में काफी कंफ्यूजन है, जो राजनीतिक दल हैं और जो दूसरे लोग हैं इसको लेकर के अलग अलग तरह के विरोध की बातें कर रहे थे, लोगों के मन में ढेर सारे संदेह पैदा हो गए थे। तो सरकार को भी लगा कि नहीं, इसके बारे में पहले लोगों के दिमाग में स्पष्ट कर दिया जाए कि इनफैक्ट ये कानून क्या है, तो इसे लागू नहीं किया गया। अब इसे लागू कर दिया गया है, तो यह भी स्पष्ट हो गया होगा आपको कि ऐसा क्यों किया गया। राइट, अब देखिए कि इसके मूल प्रावधान क्या है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इसके मूल प्रावधान क्या है, प्रावधान के बाद फिर आपको इसके उद्देश्य स्पष्ट हो जाएंगे। इसमें जो नागरिकता देने की बात है वो केवल तीन देशों के लोग जो शरणार्थी के रूप में भारत आए हुए हैं, मतलब भारत ने उनको शरण दे रखी है। ये तीन देश कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ये तीनों के तीनों देश मुस्लिम बहुल हैं। मुस्लिम बहुल क्या, ना तो कहीं तो 97% कहीं 99% मुस्लिम है, कहीं 91-92% मुस्लिम है, मतलब मुस्लिम बहुल देश है ये। वहां दूसरे भी धर्म के लोग हैं, दूसरे भी धर्म के लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो वहां अल्पसंख्यक, इन्हें आप अल्पसंख्यक कह लीजिए, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं होता है। चूंकि वो घोषित धार्मिक राष्ट्र है तो ठीक है, लेकिन मानवीयता की दृष्टि से आप उनके उत्पीड़न को तो गलत ठहराएंगे ही। मानवाधिकार क्या कहता है, आप उत्पीड़ित नहीं कर सकते। तो इसमें जो प्रोविजन किया गया है कि इन तीन देशों के जो अल्पसंख्यक लोग हैं जो भारत में शरण लिए हुए हैं उन्हें हम नागरिकता देंगे, राइट। तीन देश क्लियर हो गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। आपको एक बार मैप में जाकर के देख लेना चाहिए कि किस तरह से ये हमारे बिल्कुल बॉर्डर कंट्रीज हैं, ठीक है। अब ये जो छह समुदाय हैं जिन्हें हमने अल्पसंख्यक में काउंट किया है वो कौन है, बहुत आसान है याद रखना। हिंदू, जनरली हम बोलते क्या, बोलचाल में एक मुहावरा सा बना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इसमें से मुस्लिम शब्द को हटा दीजिए, मुस्लिमों के लिए प्रोविजन नहीं है। आलोचना करते समय ये बात आती है भाई कि मुस्लिमों के लिए भी क्यों प्रोविजन नहीं है, भारत तो एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो उनका भी अगर वहां उत्पीड़न हो रहा है तो उन्हें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में लीजिए तो वहां जो अहमदिया है उनका उत्पीड़न होता है, श्रीलंका में भी कुछ समुदाय हैं, म्यांमार में भी कुछ लोग हैं जिनका उत्पीड़न होता है, तो हमें उन्हें भी शरण देनी चाहिए, इस तरह की बातें उठती हैं। और अगर आप मुस्लिम को अलग कर रहे हैं, दूसरों को अलग कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ के समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है, पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध है, ये आलोचना में ये बातें होती हैं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों बहुत आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट रहनी चाहिए कि यह अल्पसंख्यकों के लिए है। तब इन तीनों देशों में मुस्लिम तो अल्पसंख्यक नहीं है ना, उनका एक छोटा सा वर्ग उपवर्ग भले ही वहां उत्पीड़ित हो रहा हो लेकिन वो अल्पसंख्यकों में नहीं है। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जो इन तीन देशों में अल्पसंख्यक है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो इसमें आप मुस्लिम को निकाल दीजिए, तो हिंदू सिख ईसाई ये तीन तो हो गए। जैन और बौद्ध, ये हमारे दर्शन रहे हैं भारतीय परंपरा से आए हुए जैन और बौद्ध। और अगला जो समुदाय है वो है पारसी। तो कौन कौन से हो गए, हिंदू सिख ईसाई जैन बौद्ध और पारसी, ये छह समुदाय, इन्हें दिया जाएगा। लेकिन इनकी जो डेट है भारत में आने की, जो आखिरी डेट है वो है 31 दिसंबर 2014। इससे पहले पहले वे भारत में रह रहे हों तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, ये डेट भी आपको रट जानी चाहिए। अब आप देखिए कि यहां दो चीजें आपके दिमाग में स्पष्ट हो चुकी हैं। पहला यह कि वो इन तीन देशों के हों और वे भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले रह रहे हों, तो सीधी सी बात है कि आपको इसके लिए प्रमाण पत्र तो देना पड़ेगा ना, कि भाई आप तीन में से किसी एक देश में रह रहे थे, तो वहां के जो प्रमाण पत्र हो सकते हैं दीजिए, बताइए, जिसे प्रूफ होता हो कि हाँ आप उस देश के नागरिक रहे हैं, चाहे वो पासपोर्ट ही हो कुछ भी हो, तो सरकारी दस्तावेज। अब उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। जब आप भारत में रह रहे हैं तो आपको इसका भी प्रमाण पत्र देना होगा, क्योंकि हमारे कानून में है कि आप 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले यहां रह रहे हो, तो आप भारत में रह रहे हैं आप इसका प्रमाण पत्र दीजिए, भारत में रह रहे हो उसके बहुत से प्रमाण पत्र, यहां तक कि बिजली का बिल तक भी चलेगा कि हाँ आप रह रहे थे भारत में, लेकिन कोई ना कोई प्रमाण पत्र तो आपको देना होगा। तो आपको प्रमाण पत्र देने होंगे दोनों देशों के बारे में, सिद्ध करने के लिए कि हम उस देश के नागरिक रहे हैं और हम यहाँ भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले रह रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ ही एक पॉइंट और है जो प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने ये बहुत स्पष्ट किया है कि छठी अनुसूची वाले राज्यों पर ये लागू नहीं होगा जहां इनर परमिट की प्रणाली है, यानी कि जहां जाने के लिए आपको इनर परमिट लेना पड़ता है, उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। कौन कौन से है वो, अरुणाचल प्रदेश रट लीजिएगा, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में यहीं पर आकर के आपको फंसाया जाता है। पता लगा दो तीन स्टेटमेंट तो सरल सरल से हैं, उन्हें तो आप समझ जा रहे हैं लेकिन यहां आकर के आप फंस सकते हैं। तो है अरुणाचल प्रदेश, राइट, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। मैं रिपीट कर रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, राइट। देखिए आलोचनाएं तो होती रहती हैं लेकिन सरकार ने दो तीन बातें बहुत स्पष्ट कर दी हैं कि पहली बात यह है कि जो हमारे देश में रह रहे मुस्लिम नागरिक हैं उनके किसी भी तरह के अधिकार को इसके जरिए वापस नहीं लिया गया है, उनके अधिकार यथावत रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह कि नागरिकता देने का कानून है किसी के नागरिकता को छीनने का कानून नहीं है, बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। तीसरी बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो नागरिक इन तीन देशों से आकर के हमारे यहाँ रह रहे हैं, तो चूंकि वो हमारे देश के नागरिक नहीं है तो हमारे देश के उन अधिकारों का वो उपयोग नहीं कर सकते, जैसे वो संपत्ति नहीं खरीद सकते, मतदान नहीं कर सकते, तो सेकेंड सिटीजन की तरह रह रहे हैं। सिटीजन शब्द का हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, बल्कि शरणार्थी की तरह रह रहे हैं। तो भारत सरकार ने कहा है कि भाई उनके यहां रहने पर जो पुनर्वास और नागरिकता की जो बाधाएं हैं, हम अपने सीए के जरिए उसको दूर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि दो दशकों से जो पीड़ित शरणार्थी भारत में रह रहे हैं वो सम्मानजनक तरीके से हमारे देश में रहें। तो दोस्तों, इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है, वो सम्मानजनक तरीके से हमारे देश में रहें और बकायदे उनकी जो अपनी सांस्कृतिक, भाषिक और सामाजिक पहचान है उसकी रक्षा करें। वो हम इसीलिए ये कानून लेकर के आए हैं, जो भी एक नागरिक के अधिकार हो सकते हैं हम इसके माध्यम से उन्हें वो अधिकार देना चाहते हैं। अंत में मैं दो बातें और कहना चाहूंगा। पहला तो ये है कि आप याद रखिए कि एनआरसी और सीएए दोनों अलग अलग हैं। एनआरसी का मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि एक ऐसा रजिस्टर जिसमें भारतीय नागरिकों के नाम दर्ज हैं, इसका नागरिकता से कोई संबंध नहीं है, सीधे सीधे नागरिकता से, राइट। तो एनआरसी के साथ इसे मिक्सअप मत कीजिएगा। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, वो ये है कि खासकर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, कुछ जैसे असम है कि पश्चिम बंगाल है, वो इसका बहुत ही जबरदस्त रूप से विरोध कर रहे हैं। उनको ये डर लग रहा है कि जैसे बांग्लादेश से बहुत से शरणार्थी आए हुए हैं, हमारे जो बॉर्डर एरिया है जैसे पश्चिम बंगाल है और उधर आप देख लीजिए बांग्लादेश से जो सटे हुए एरिया है, बांग्लादेश से बहुत से शरणार्थी आए हुए हैं, अब ये नागरिक बन जाएंगे। तो इन लोगों को ऐसा लग रहा है, जैसे असम को ही ले लीजिए, कि हमारी जो अपनी पहचान है इन लोगों के आने से वो खो जाएगी, वो प्रभावित होगी, तो वो विरोध कर रहे हैं इसका, वो इससे थोड़ा सा भयभीत हो रहे हैं अपनी अस्मिता को लेकर। लेकिन उन्हें भयभीत होने की इसलिए जरूरत नहीं है कि वो इतने साल से रह रहे हैं तो काफी कुछ वो भारतीय जैसे बन गए, और बकायदे उन्हें ये शपथ देना भी होगा कि वो भारत की नागरिकता स्वीकार कर रहे हैं, भारत के संविधान के अनुकूल वो जीवन यापन करेंगे, वे इस तरह का शपथ लेंगे। और फिर जब यहां बहुसंख्यक वर्ग के साथ वो मिलेंगे घुलेंगे तो ये इतने बड़े भय वाली बात कम से कम मुझे तो नहीं लगती। यहां मैं एक तथ्य आपको और बताना चाहूंगा, मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने की दृष्टि से अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और वो ये कि बहुत से राज्यों ने ये कहा है कि वे अपने यहां सीएए को लागू नहीं होने देंगे। चीफ मिनिस्टर्स तक ने कहा है। आपके दिमाग में ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि वो लागू होने देंगे या नहीं होने देंगे ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, ये संघ का विषय है, भारत सरकार ने कानून बनाया है और पूरे देश पर ये लागू होगा, इसमें राज्यों की अपनी च्वाइस नहीं है। आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल स्पष्ट रहनी चाहिए, राइट। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।